ओम शांति। आप लोग भट्टियां कर रहे हैं और भट्टियों में उम्मीद करते हैं बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस आप सबको मिल रही होंगी, ज्ञान की एक अच्छी गहराई मिल रही होगी योग के साथ साथ। ऐसा है, योग अच्छा लग रहा है, योग की एक अच्छी अनुभूति हो रही है? हाथ खड़ा करके बताएं, क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छी तरह से सहयोगी है, प्रकृति का सहयोगी होना भी हमारी साधना के लिए बहुत आवश्यक होता है। यदि मौसम बहुत गर्म है, बहुत सर्दी है, तो भी हम अच्छी साधना नहीं कर सकते हैं, तो वातावरण का भी प्रभाव जरूर पड़ता है। इसलिए ऋषि मुनियों को कहां पर तपस्या करते दिखाया गया है? कहां पर जाते हैं वो लोग? हिमालय में। हिमालय यानी पहाड़ों में जाते हैं। आप सब भी पहाड़ पे हैं, भले ये हिमालय की पहाड़ी नहीं है, ये अरावली है, पर आप सब भी पहाड़ी पर हैं। तो एक अच्छी साधना चल रही है, अच्छी क्लासेस आप सबको मिल रही हैं और आप निश्चित रूप से ज्ञान की गहराई में उतर रहे होंगे। ये ज्ञान हमारे जीवन को बहुत सरल बनाता है। योग हमें आत्मबल देता है, इससे हमारा आत्म परिवर्तन होता है, लेकिन ज्ञान हमारे जीवन को सरल बनाता है। ज्ञान यानी समझ। परंतु ज्ञान और समझ के बीच में थोड़ा सा गैप होता है। ज्ञान ही समझ बनता है। कब बनता है? ज्ञान समझ में कन्वर्ट कब होता है? जब उसका चिंतन किया जाए। भोजन ऊर्जा में परिवर्तित कब होता है? जब पेट उसका चिंतन करता है, यानी उसका मंथन करता है अंदर में। अगर पेट भोजन का मंथन ना करे तो उससे ऊर्जा मिलेगी? आपने पनीर की सब्जी खाई हो, ड्राई फ्रूट्स खाए हो, बहुत हेल्दी फ्रूट्स खाए हो, जूसेस पिए हो, लेकिन उसको पेट हजम नहीं कर पा रहा है, उसको चरण अंदर नहीं कर रहा है, तो भोजन चाहे कितना भी पौष्टिक हो, उससे ऊर्जा नहीं मिलती है। ज्ञान के साथ भी यही सिद्धांत लागू होता है। ज्ञान चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर वो समझ में परिवर्तित नहीं हुआ है, तो वो ज्ञान हमारे लिए केवल एक सूचना है। मैं आत्मा हूं, अगर आत्मा बना नहीं हूं, ये बात हमारी समझ तक नहीं गई है, तो हमारे लिए ये आत्मज्ञान एक सूचना मात्र है। शिव बाबा हमारा पिता है, उससे यदि हम अपना संबंध जोड़ते हैं तो हमारे सारे संकट दूर हो जाते हैं। अगर ये ज्ञान समझ में कन्वर्ट नहीं हुआ है, हमारे भीतर अंतर मन में समाया नहीं है, तो ये हमारे लिए मात्र एक सूचना है जिसकी हमारे जीवन में कोई उपयोगिता नहीं है। सिर्फ हम डिस्कस कर सकते हैं, सुन सकते हैं, सुना सकते हैं। तो ज्ञान को समझ में बदलना ये बहुत जरूरी है और ये काम चिंतन से होता है। इसलिए एक योगी के जीवन में, एक पुरुषार्थी के जीवन में चिंतन, चाहे वो आत्मचिंतन हो या ज्ञान का चिंतन हो, बहुत जरूरी है। और हमारी दुर्बलता क्या है? हम ब्राह्मणों की दुर्बलता क्या है कि हम चिंतन ही बहुत कम करते हैं। सुनते बहुत हैं, सूरज भाई का क्लास चल रहा है, भागो भागो भागो, सूरज भाई का क्लास सुनना है, आतम भाई की क्लास सुननी है, इनकी क्लास सुननी है, मुरली पढ़नी है, यूट्यूब पे क्लासेस, बहुत सुनते हैं, लेकिन सुन करके उसे हजम नहीं करते हैं, वास्तव में बाबा क्या कहते हैं कि हमें संपूर्ण बनने के लिए एक मुरली काफी है। सुना है मुरली में कभी बाबा ने ऐसा कहा है? संपूर्ण बनने के लिए बाबा कहते हैं कि एक मुरली काफी है। कभी बाबा कहते हैं 6 महीना बहुत है। हमें कितना साल हो गया ज्ञान में चलते, बने संपूर्ण नहीं बने ना, अभी भी बहुत कमियां हैं। कारण यही है कि हम उसका चिंतन नहीं करते हैं। सुन तो लिया, चिंतन नहीं किया, वो आत्मसात नहीं हो पाता है। तो चिंतन की बहुत अधिक आवश्यकता है हमारे जीवन में। इसके महत्व को हम सबको समझना चाहिए और अपनी दिनचर्या में एक ऐसी आदत बना लेनी चाहिए कि हर रोज हम थोड़ा ज्ञान का चिंतन या आत्मचिंतन जरूर करें। ये आत्म परिवर्तन का सबसे सहज और सबसे तेज तरीका है, सबसे फास्ट आत्म परिवर्तन का तरीका है चिंतन। तो आज हम एक वर्कशॉप करेंगे और इस वर्कशॉप में हम चिंतन करेंगे, अपनी बुद्धि को हम काम देंगे, मन को चलाने का प्रयास करेंगे। चिंतन से दो बातें होती हैं, एक तो ज्ञान की समझ बढ़ती है, समझ हमारे जीवन को सरल करता है। दूसरा, चिंतन से हमारा ज्ञान व्यवस्थित होता है। उस व्यवस्थित ज्ञान को जब हम दूसरों को व्यवस्थित रूप से सुनाते हैं तो उसे सेवा होती है। दूसरों तक हम अपने ज्ञान को अच्छे ढंग से पहुंचा पाते हैं तो वाचा सेवा भी हम सबको करनी है, कर्मणा तो हम सब बहुत करते हैं। तो चिंतन से ज्ञान भी हमारा परिष्कृत होता है, ज्ञान हमारा व्यवस्थित होता है। हमारे पास ज्ञान बहुत है, पर यदि आपको यहाँ स्टेज पर बिठा दिया जाए और आपको एक टॉपिक दे दिया जाए, मुझे लगता है कि 100 में से 90 लोग बोल नहीं पाएंगे, इधर की उधर उधर की इधर व्यवस्थित रूप से नहीं बोल पाएंगे, जो हमारे कानों को अच्छा लगे, हमारे मन को अच्छा लगे, हमें उससे इंस्पिरेशन मिले। ऐसा नहीं कि उनके पास ज्ञान नहीं है, ज्ञान है, उसको सिस्टमाइज नहीं किया, क्रमबद्ध नहीं किया है, ऑर्गेनाइज नहीं किया है। चिंतन हमारे ज्ञान को सुव्यवस्थित करता है। तो अब हम चिंतन करेंगे इस वर्कशॉप में और आप देखेंगे कि जब हम किसी विषय को लेकर के चिंतन करते हैं तो मन में कितने अच्छे अच्छे विचार आते हैं। ज्ञान जो अंदर सोया है, दबा है, वो जागृत होने लगता है, खुद को भी बहुत अच्छा लगता है और चिंतन से मन भी काफी एकाग्र होता है। मन को एकाग्र करने का भी एक बहुत सहज तरीका है। तो आप सबके पास डायरी पेन है? सबके पास डायरी पेन है? मैं एक टॉपिक अभी देता हूं और आपको चिंतन करना है। वैसे तो हम 10-12 लोगों का एक ग्रुप बनाते हैं, उसमें चिंतन कराते हैं, परंतु यहाँ हॉल में इतनी जगह नहीं है, तो आप जहां भी बैठे हैं आपस में 2-2, 3-3 का ग्रुप बना लेंगे और धीमी आवाज में आप लोग उस विषय पर चर्चा करेंगे ताकि दूसरों को डिस्टर्ब ना हो। जहां बैठे हैं 2-2, 3-3 आपस में मिल करके डिस्कस करेंगे। तो आज जो वर्कशॉप का विषय है वो है हमारा संस्कार परिवर्तन। लिख लें इसे। एक चीज और भी ध्यान रखें कि जब भी हम चिंतन करते हैं तो किसी भी विषय को छोटे छोटे भागों में तोड़ लेना चाहिए और फिर उस पर जब हम चिंतन करेंगे तो एक व्यवस्थित क्रमबद्ध रूप से बातें निकल करके बाहर आती हैं। तो संस्कार परिवर्तन, अब इसको 2-3 भागों में तोड़ लेते हैं। पहला, संस्कार क्या है, कैसे बनता है संस्कार, पहला सब टॉपिक ये। और दूसरा कि संस्कार का परिवर्तन कैसे होता है, हम दो लेते हैं इसमें, संस्कार क्या है और दूसरा सब टॉपिक है कि संस्कार का परिवर्तन कैसे होता है, यानी वो कौन कौन से स्टेप्स हैं, कौन कौन से स्टेप्स जो हमारे संस्कार परिवर्तन की गति को तेज करती हैं। इसमें बहुत सारी बातें, बहुत अच्छी अच्छी बातें आएंगी। तो मेन पॉइंट यही है कि संस्कार का परिवर्तन कैसे करें या कैसे होता है, इस पर आपको पॉइंट्स निकालनी है और निकाल करके नोट करना है। और लास्ट में हम 4-5 लोगों से यहाँ पर अनुभव शेयर करेंगे। आप में से एक किसी को आप लीडर बना लें जो नोट्स तैयार करे और बाकी लोग डिस्कस करें, और जो भी सुना चाहे 4-5 लोग लास्ट में यहाँ आकर के सुनाएंगे। तो आपको 20-25 मिनट का समय मिलता है। अभी 12:15 हो रहा है और 12:00 आपको 10 मिनट पर ये पूरा करेंगे। फिर 15 मिनट में हम आपका अनुभव सुनेंगे। तो टॉपिक क्लियर है आपको? टॉपिक क्लियर है, संस्कार परिवर्तन, संस्कार क्या है, दूसरा संस्कारों का परिवर्तन कैसे किया जा सकता है, यानी वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हमें संस्कार परिवर्तन में मदद करते हैं। आप लोग शुरू करते हैं। ओम शांति। इधर बहनों की तरफ पीछे काफी जगह है, अगर आप कोई लोग उधर जाकर के सेपरेट बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं, उधर काफी जगह है, नहीं तो कई बार आवाज टकराती है। आप लोग बैठ सकते हैं और धीमी आवाज में आप लोग डिस्कस करेंगे और नोट्स तैयार करेंगे। ये नोट्स आपको आगे भी काम आएंगे। आपके पास 3 मिनट का समय और है, आप लोग अभी वाइंड अप कर लें। अभी आप लोग अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं। जो लोग थोड़ा नजदीक नजदीक बैठे हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लें। अभी हम कुछ 2-3 लोगों से सुनना चाहेंगे। कुछ चिंतन चला आप लोगों का, दिमाग कुछ चला? हाथ खड़ा करके बताएं। कुछ बातें बाहर अच्छी अच्छी निकली? तो आप में से जो भी भाई बहने अपना ये अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो जो भी चिंतन किया वो सुनाना चाहते हैं, सामने में माइक रखा हुआ है, आप एक एक करके संक्षेप में 2 मिनट में, 2 से 2.5 मिनट में आप लोग अपनी बातें रख सकते हैं। तो कौन सुनाना चाहेगा, आ जाए, आए, सामने माइक है, और जिसको भी सुनाना है आगे आके बैठ जाए ताकि समय वेस्ट न हो। सार रूप में मेन मेन पॉइंट्स आप शेयर करेंगे, सुनाए।
ओम शांति। पहला है संस्कार क्या है। जब किसी भी कर्म, चाहे वो स्थूल व सूक्ष्म हो, उसको बार बार करते हैं तो कुछ समय के पश्चात वह हमें बहुत सहज लगने लग जाता है, और उसे पुनः करने में फिर हमें निर्णय शक्ति का भी प्रयोग नहीं करना होता, और वहीं धीरे धीरे हमारा स्वभाव बनते जाता है। तो इसे ही हम संस्कार कहते हैं, माना रिपीटेशन, बार बार बार। तो जैसे अगर हम सूक्ष्म में देखें तो किसी बात का नकारात्मक चिंतन, किसी चीज को देख करके नेगेटिव थिंकिंग बनाना, और अगर बार बार रिपीट करते हैं उसे, तो वो संस्कार बन जाएगा। ऐसे ही स्थूल में भी कोई कर्म करते हैं हम, जैसे किसी का झूठ बोलने का संस्कार हो जाता है, बार 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 वो रिपीट करता है, और किसी का मदद करने का संस्कार हो जाता है। तो ऐसे संस्कार ये रिपीटेशन है बेसिकली। और अगर हम उसके परिवर्तन की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि हैबिट्स कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी रिप्लेस। उसे हम नष्ट तो नहीं कर सकते लेकिन परिवर्तन कर सकते हैं। परिवर्तन के लिए भी 2 चीजें पहले हमारे सामने होनी चाहिए, एक तो दृढ़ता और दूसरा लक्ष्य। ये लक्ष्य रहे कि मुझे परिवर्तन करना है। तो इसकी भी सेम प्रोसेस है, जैसे संस्कार बनता है वैसे ही ये परिवर्तन भी होता है। माना अगर बार बार किसी नई चीज को आप धारण करना चाहते हैं तो उसको अगर आप बार बार रिपीट करते हैं तो धीरे धीरे वो हमारा संस्कार बनना शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही संस्कार जो है वो परिवर्तित भी होता है।
बढ़िया, बहुत अच्छी बात। भाई जी ने डेफिनेशन एक बहुत अच्छा दिया कि जब हम बार बार रिपीटेडली कोई एक्शंस को करते हैं तो बाद में उसको करने के लिए निर्णय की भी जरूरत नहीं, बुद्धि की जरूरत नहीं, बहुत सोचने की जरूरत नहीं है, और वो धीरे धीरे हमारे नेचुरल नेचर बन जाता है। तो ऐसी बातें, ये डेफिनेशंस हम सबको याद करके रखनी चाहिए। जब हम कभी ज्ञान किसी को सुनाते हैं तो ये चीज जब हम कोट करते हैं तो बहुत अपील करता है। कॉमनली तो हम जानते ही हैं कि संस्कार कैसे बनते हैं, तो आपका डेफिनेशन बहुत अच्छा लगा। सुनाए, थोड़ा सा देख ले, माइक चल ले रहा है। हाँ, बस माइक को ना वैसे ही रख दें, ऑफ ना करें।
ओम शांति। पहला प्रश्न तो बहुत अच्छा है, संस्कार क्या है। तो हम ये सोचते हैं कि संस्कार कुछ तो पूर्व जन्मों के अच्छे या बुरे आत्मा साथ लाती है, और संस्कार मन बुद्धि आसपास के लोगों संगी साथियों और वातावरण अनुसार भी ढल जाते हैं। हमारा मन जिसे स्वीकार कर लेता है और बुद्धि उस पे कार्य करती है, तो हमारे संस्कार स्वतः ही पक्के होते चले जाते हैं, और कुछ संस्कार तो परिस्थितियों वश भी उत्पन्न होते हैं। दूसरा प्रश्न था, संस्कारों को परिवर्तन कैसे किया जाता है। तो पहले शब्दों में मैं ये कहूंगी, संस्कार बनने में हमारी कंपनी का बहुत बड़ा असर होता है। जैसे कहते हैं ना, जैसा हो संग वैसा लगे रंग। तो अगर संस्कार को परिवर्तन करना है तो सबसे पहले हमें अपनी कंपनी अच्छी करनी पड़ेगी, हमें संग दोष से बचना होगा और अपने मन बुद्धि को कंसंट्रेट करना होगा, यानी एकाग्र करना होगा, अपने आप पे कंट्रोल करना होगा। वो कंट्रोल भी संग दोष से बचने से आएगा, अच्छी कंपनी से आएगा। तो हम अपने संस्कारों को कन्वर्ट कर सकते हैं, और हर आत्मा को उसके मूल रूप से, चाहे वो जैसी भी है, उसके संस्कार बुरे हैं या अच्छे हैं, तो ये सोच करके कुछ कमियां हम में भी हैं, तो जैसे वो हमें स्वीकार कर रहे हैं ऐसे हमें भी उन्हें स्वीकार करना है। इसलिए जो आत्मा जैसी है, उसके स्वभाव संस्कार जैसे हैं, उसे वैसे ही स्वीकार करके और अपनी कमियों को देखकर, अपने पोटेंशियल देखकर भी हम अपने संस्कार को परिवर्तन कर सकते हैं। संग दोष से सबसे पहले बचना चाहिए। ओम शांति। थैंक यू।
नेक्स्ट, आप सब ये नोट करते जाएं। देखिए, सबके पास अलग अलग बातें सबसे मिल रही हैं। पहले भाई ने जो सुनाया, हमारे पास लक्ष्य होना चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए। ये बहन जी ने सुनाया, वो एक अलग, संघ से भी हमारे संस्कार बनते हैं, तो हमें संघ की संभाल करनी है। तो ऐसे वातावरण से, तो हरेक के पास अलग अलग बातें हैं। तो अगर हरेक की बातों को हम लिखते हैं तो हमारे पास एक चार्ट बन जाता है, एक लंबी लिस्ट बन जाती है, जिस पर वर्कआउट करना, पुरुषार्थ करना हमारे लिए सहज हो जाता है। तो आप सब ये सारी बातें नोट करें, खास करके वो जो संस्कार परिवर्तन में हेल्प करते हैं। कैसे हमारा संस्कार परिवर्तन हो सकता है, हमें मालूम होगा कि कैसे होगा, तो ही हम उस पर पुरुषार्थ कर पाएंगे। एक एक पॉइंट को लेकर के हम 15 दिन 20 दिन अगर हम पुरुषार्थ करते हैं तो वो चीज हमारे संस्कारों में आ जाती है। सुनाए।
ओम शांति। संस्कार मतलब किसी व्यक्ति की जीवन शैली, रहना चलना, खाना पीना, बोलना मिलना और व्यवहार। परमात्मा ने सभी व्यक्ति एक जैसे बनाए हैं, बेहद देही संस्कार। समाज में रहते हैं तब हमें किसी भी व्यक्ति के गुण अवगुण उसके संस्कारों से नजर आते हैं। संस्कार परिवर्तन के लिए जो स्टेप हैं, ज्ञान सुनो पर उसका चिंतन भी करो, संपूर्ण निर्विकारी बनो, अमृत वेले उठो पर योग एक वापसी लगाओ, इधर उधर मतलब मन ना जाए, अपने आप को निमित्त मानकर सेवा करनी है, मन और बुद्धि पर कंट्रोल करना है। किसी से ज्यादा प्रेम या विरोध नहीं रखना, सुख और दुख में एक समान रहना है, सभी से प्रेम भावना रखना है।
ठीक है। नेक्स्ट,
ओम शांति। संस्कार मनुष्य की मनोदशा को दर्शाते हैं। संस्कार सुकर्म और विकर्म
अभी को भी और लोग ना आए क्योंकि समय हमारे पास कम है, बस इतने बहुत हैं।
जब कोई सुकर्म और विकर्म हमारा भरपूर साथ देते हैं तो हम उन्हें संस्कार कहते हैं। हम कह सकते हैं कि संस्कार दो तरह के होते हैं। पहला सुखदायी संस्कार, जिसे हम अपनाने में बहुत सुख और उमंग उत्साह की अनुभूति करते हैं, और दूसरा होता है दुखदायी संस्कार, जिसे कोई भी मनुष्य अपनाना नहीं चाहता, और संस्कारों के वशीभूत मनुष्य न चाहते हुए भी उल्टा कर्म कर बैठते हैं, उन्हें सबकॉन्शियस माइंड की संख्या दी जाती है। इसलिए दुखदायी संस्कारों का परिवर्तन जरूरी हो जाता है, जैसे क्रोध करना, अलबेलापन इत्यादि। हमें अपने संस्कारों की परिवर्तन करने के लिए कुछ युक्तियां अपनानी पड़ती हैं, जैसे अपनी दिनचर्या को सेट करना। मनुष्य की अवस्था का सारा आधार चर्या पर होता है। चर्या में दिनचर्या भी शामिल हो जाता है, संध्याचर्या भी और रात्रिचर्या भी शामिल हो जाता है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति को नाम मान शान के पीछे नहीं भागना चाहिए, मान और अपमान में एक ही स्थिति रहनी चाहिए। तीसरा, किसी भी प्रकार के वैभवों अथवा लग्जूरियस फैसिलिटीज के पीछे नहीं भागना चाहिए। चौथा, हमें अपने आहार और व्यवहार पर पूरा ध्यान देना चाहिए। ओम शांति।
बढ़िया, बहुत अच्छा। बहन की बातें सुनकर के एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। आप लोगों ने बहुत अच्छा चिंतन किया है, लेकिन इस चिंतन को थोड़ा सा आप सब सूक्ष्मता की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे। बहन ने जैसे बताया कि संस्कार परिवर्तन के लिए हमें साधनों के पीछे, लग्जरी के पीछे, मानसान के पीछे नहीं जाना है, नहीं जाना है। मानसान की इच्छा ये भी एक संस्कार है, साधनों के वशीभूत होना ये भी एक संस्कार है। सिर्फ नहीं जाना, बोलने से काम तो नहीं बनेगा ना। कैसे नहीं जाना है, उसके लिए हम क्या पुरुषार्थ करें? मानसिक स्तर पर, सटल लेवल पर हम क्या पुरुषार्थ करें? हम अपने ज्ञान के किसी भी पहलू पर जब चिंतन करते हैं, हमारा फोकस होना चाहिए कि हम उसके सूक्ष्म पहलू पर ज्यादा ध्यान दें, स्थूल पर नहीं। स्थूल अपने आप करेक्ट होता है। तो आप इस पर आगे जा करके करेंगे और चिंतन, आपके पास 1 से 4, 4:30 बजे तक का रेस्ट का समय है। इतना तो कोई दिन में रेस्ट करता नहीं है, भोजन में भी आधा घंटा लगता है। तो आप बैठ करके कमरे में इस पर और आगे चिंतन करना, इसको सूक्ष्मता की ओर ले जाना। वो सूक्ष्म कौन कौन सी बातें हैं जो संस्कार परिवर्तन में मदद करती हैं? ये नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो अलग बात है, हमें पता है, करें क्या उसके लिए। सुनाए।
ओम शांति। भाई साहब, आपने पूछा था संस्कार क्या है, जैसे जो भी टॉपिक दिया,
ऑडियंस की तरफ देख करके बताएं।
संस्कार कार्य करने का वो तरीका होता है जो हमारी आदत स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है, और जो आदतें होती हैं वो सरल होती हैं, सहज होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि संस्कार वह कार्य विधि है जिसको करने के लिए किसी सोच की, विशेष सोच की आवश्यकता नहीं होती है। वह एक कार्य पद्धति है जो अपने आप कार्य करती है। हम कह सकते हैं कि संस्कार हमारे ऑटोमेटिक होते हैं, अपने आप ही वो चीज बाहर निकलती है। तो संस्कार को परिवर्तन करने के लिए सबसे पहले, क्योंकि संस्कार बनते भी हमारे मन बुद्धि में, जो मन में आता है बुद्धि उस पर कार्य करती है और वो संस्कार बन जाता है। तो अगर हमें अपना कोई संस्कार परिवर्तन करना है तो हमें दोबारा से अपने मन और बुद्धि पर ही कार्य करना पड़ेगा। मतलब मन और बुद्धि को संस्कार परिवर्तन के लिए हमें प्रोग्रामिंग देनी पड़ेगी कि ये मेरा संस्कार चाहे वो नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है। मान लो कोई भी परिवर्तन मुझे चाहिए तो पहले मुझे मन में वो संकल्प देना पड़ेगा कि मुझे ये चेंज करना है, और बुद्धि पर उस पर कार्य करेगी। और हर बार वो कार्य करते हुए हमें अटेंशन देना पड़ेगा कि किस चीज का हमें परिवर्तन करना है, कि वो बार बार, क्योंकि जब तक हम अटेंशन नहीं देते, अटेंशन रूपी पहरेदार नहीं बैठाते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली फिर दोबारा पुराना संस्कार सामने आएगा। और उस परिवर्तन, मतलब कोई भी जो संस्कार हमें परिवर्तन करना है उस पर हमें एक अवधि पर कार्य करना पड़ेगा, ये एक दो दिन की बात नहीं है, सेम प्रोसीजर, क्योंकि वो प्रोसीजर हमें कार्य करते करते एक प्रोसीजर बना। तो परिवर्तन करने के लिए भी हमें एक कार्य अवधि चाहिए, मतलब 21 दिन, कुछ लक्ष्य लेकर के 40 दिन तक मेरे को इस तरह से अटेंशन देकर, ये अपने ऊपर एक अटेंशन देकर ये कार्य करना है, इसको परिवर्तन करना है, तो ही हम उसको परिवर्तन कर सकते हैं।
और साथ में मन और बुद्धि में अपने कार्य करने में हमें एक दृढ़ता चाहिए कि मुझे करना ही है, क्योंकि बिना दृढ़ता के कोई भी कार्य सहज और सरल होता नहीं है। और ओम शांति।
बहुत अच्छी बात बहन जी ने, दो बातें बहुत अच्छी, एक दृढ़ता और दूसरा कि हम एक एक गुण को धारण करने के लिए या एक एक अवगुण को छोड़ने के लिए समय दे, जैसे इन्होंने कहा 30 दिन 40 दिन जो भी एक ड्यूरेशन सेट करें और उस अनुसार वर्कआउट करें। तो एक ही चीज पर जब हम लंबे समय तक पुरुषार्थ करते हैं तो वो चीज हमारे नेचर में शामिल हो जाती है। मैं समझता हूँ ये दो भाई कब से खड़े हैं, थोड़ा ये भाइयों को भी सुन लेते हैं, फिर बहनों ने बहुत सुनाया और आप और ज्यादा लोग इसमें ऐड ना हो, 12:30 बजे तक हमें पूरा भी करना है।
थैंक यू भाई, बताएं। ओम शांति। संस्कार परिवर्तन क्या है, इसके लिए हमें किसी भी कार्य को करने के लिए एक लगातार प्रयास, जब तक नहीं होगा हमारा संस्कार डेवलप नहीं होगा। जैसे हम छोटे बच्चे को ब्रश करना सिखाते हैं तो उसे एक समझ दी जाती है कि ब्रश क्यों करना है, जब तक वो समझ उसको नहीं आएगी वो ब्रश नहीं करेगा। लेकिन इसी प्रकार जैसे हम भाई साहब ने भी कहा कि चिंतन हम ब्राह्मण शायद सभी लोग नहीं करते हैं, मैं भी उसमें शामिल हूं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मुरली सुनने का हम सबका संस्कार डेवलप हो चुका है, ये बात पक्की है। तो संस्कार ये है बेसिकली, और संस्कार परिवर्तन के लिए हमें चाहिए कि एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दृढ़ता पूर्वक हमारा प्रयास जब तक नहीं होगा, और वो भी एक डेफिनेट पीरियड के लिए। भक्ति काल में भी कहा जाता है कि जब आप किसी कार्य को लगातार 30 दिन तक करते हैं तब जाके आपका कोई संस्कार डेवलप होता है, नहीं तो आपका संस्कार वो अगर बीच में एक दिन भी टूट गया, गुरुद्वारे में भी लोग जाते हैं तो चलिया करते हैं वो लोग, 40 दिन कंटिन्यूसली जाना होता है तो उसको कंप्लीट करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं वो लोग। मैंने देखा है कई लोगों को, वो अधिकतर टूट भी जाता है लेकिन टूटने के बाद वो फिर दोबारा से अपना प्रयास करते हैं। तो इसी प्रकार से हमें भी अपने संस्कार को डेवलप करने के लिए वो लगातार एफर्ट्स देने होंगे, तभी जाके संस्कार डेवलप होगा। संस्कार बेसिकली हमें अपने पूर्व जन्मों के संस्कार मिलते हैं, माता पिता से संस्कार प्राप्त होते हैं, पड़ोसियों से, टीचर से, ये संस्कार हैं जो हमें सहज रूप से मिलते हैं। लेकिन संग दोष का जो फर्क होता है वो एक सर्टेन एज में आने के बाद में वो कभी कभी इतना हावी हो जाता है कि जो पिछले संस्कार हैं वो सारे सप्रेस हो जाते हैं। ओम शांति
भाई को दे दें। अभी हम सिर्फ दो तीन लोग और सुन पाएंगे, ये छोटे बच्चे को आगे ले आइए, आप आगे आ जाओ।
ओम शांति।
आप आगे आ जाओ, सुनाए।
मैंने बताया था कि ग्रुप में जो है 2-4 आदमी की इकट्ठे करके सुनना है, तो एक भाई ने बताया संस्कार के लिए कि देह के और आत्मा के जो कर्म होते थे, देह का होता दुख देने वाला, आत्मा का होता सुख देने वाला संस्कार। बाकी खत्म करने के लिए एक पॉइंट में बताया कि ज्ञान योग के बल द्वारा हम इसको खत्म कर सकते हैं। बाकी दूसरे भाई ने बताया इसमें क्या है कि संस्कार आत्मा द्वारा शरीर द्वारा काम किया हुआ तो संस्कार बनते हैं, अपने द्वारा करते हैं, देह और देह के संबंध में ना बने, दूसरे को अवगुण को ना देखे, विशेषता देखे, इससे संस्कार मिटेगा। अब दूसरे ने इसमें बताया, थोड़ा सा उसका डिटेल भी सुन लेते हैं। संस्कार आपने बताया संस्कार क्या है, संस्कार जो है कर्म बार बार करते हैं उसे संस्कार कहते हैं, मगर संस्कार की भी कई वैरायटी होती है। जैसे देवी संस्कार है हमारे, क्या है महात्मा के संस्कार है साधु संत वाले, धर्मात्मा संस्कार है, पापात्मा संस्कार है, पुण्यात्मा संस्कार है, श्रेष्ठ आत्मा संस्कार है, पूर्व जन्म के संस्कार है, इसके बाद सतयुग के भी संस्कार है, फिर त्रेता के भी संस्कार है, द्वापर के संस्कार है, अभी वर्तमान में कलयुग के संस्कार, अभी हमारे में मध्य के संस्कार है जो है, उसको खत्म करने के लिए हमें उसके ऊपर काम करने हैं जो भी पाप कर्म ज्यादा बने हुए। अब संस्कार परिवर्तन कैसे होता है, तो एक ईश्वरीय संस्कार नहीं है और संस्कार है जो लोगों को परिवर्तन किया जाता है, उसके लिए भी पॉइंट है बताए संस्कार परिवर्तन कैसे होता है। एक तो संघ में आने से संस्कार परिवर्तन होता है, हम अच्छे संघ जाए अच्छे परिवर्तन, अच्छा गलत संघ लगे तो गलत परिवर्तन, तो संघ में होता है। दूसरी होती है स्मृति से, अगर स्मृति में हमारे अच्छी बातें आ गई तो उससे भी चेंज हो जाता है। तीसरी आ गई अनुभव से, अनुभव के द्वारा हमें जो बार गलती कर गया उससे आगे ना करें, उससे भी संस्कार हमारे चेंज हो सकते हैं। फिर है बार बार कर्म करने से, फिर डरा के भी संस्कार चेंज किया जाता है। फिर क्या है सुमान में रह के भी संस्कार चेंज होता है। फिर वरदान के द्वारा भी संस्कार चेंज हो जाता है, जो बाबा ने दिया हुआ है कि वरदान से चेंज होते हैं। फिर अपनी इच्छा शक्ति से भी चेंज कर सकते हैं संस्कार। मायपन के मायपन से आत्मा स्मृति और जागृति से और परमात्मा स्मृति से भी संस्कार चेंज होता है। फिर है समय के प्रभाव में भी संस्कार चेंज होता है। और क्या है, और
ठीक है, बहुत सारी बातें हो गई। अभी हम लास्ट इस बच्चे को सुन लेते हैं, बाकी लोग बैठ जाएं क्योंकि 12:30 बज गया है। वही बातें रिपीट होंगी तो कोई फायदा नहीं है। अभी ये बच्चे को दे दें।
ओम शांति।
बड़े तो बड़े, छोटे सुभान अल्लाह। देखो इतने छोटे बच्चे ने भी चिंतन किया है, तो इस बच्चे से हम सबको प्रेरणा लेनी है कि जब इतना छोटा बच्चा इतना अच्छा पुरुषार्थ कर सकता है तो हम सबको तो करना ही चाहिए। तो अभी हम सुनते हैं इन्होंने क्या चिंतन किया है।
पहले जो क्वेश्चन था, संस्कार क्या है, अगर हम देखें तो हम संस्कार को दो वर्ड में स्प्लिट कर सकते हैं। संस्कार संस और कार, संस यानी अच्छे और कार यानी कार्य, तो यानी संस्कार यानी हमारे कार्य। तो अभी संस्कार दो प्रकार में होते हैं, पहले हमारे पुराने संस्कार और दूसरा हमारे नए संस्कार जो हमें अभी बाबा सिखाते हैं। पुराने संस्कार यानी जो हमारी पुरानी आदतें हैं, जो हम 63 जन्मों से हमारे साथ चलते हैं। जैसे एग्जांपल है किसका स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा होता है, किसका थोड़ा गुस्से वाला होता है। और हमें जो संस्कार मिलते हैं वो दो तरीके से मिलते हैं, पहला जो हम हमें अपने माता पिता देते हैं और दूसरा जो हम दूसरों को देख के सीखते हैं। और जो आत्मा का संस्कार है वो शांत है। जैसे अगर कोई छोटे बच्चों के एग्जांपल भी ले लो तो उससे पूछोगे आपको क्या पसंद है, तो मतलब शोर शराबा या शांत, तो बच्चा तो बोलेगा कि मेरे को शोर शराबा पसंद है। अगर उसको भी हम कहाँ पर एकदम डिस्को या कुछ भी अगर हम वहाँ पर उसको छोड़ दे तो थोड़ी देर कोई भी एंजॉय करेगा, पर थोड़ी देर के बाद उसको लगेगा नहीं अभी मैं थक गया हूँ मेरे को शांत। तो आत्मा का जो संस्कार है वो हमेशा शांति है। अभी बात आती है कि दूसरा क्वेश्चन था संस्कार का परिवर्तन कैसे करें। तो सबसे पहले तो हमें संस्कार परिवर्तन करने के लिए तो हमारे मन में इच्छा होनी चाहिए, नहीं तो बाबा भी कहते हैं कि मजबूरी वाला हम जो सहन करते हैं परिवर्तन नहीं, अपने इच्छा होनी चाहिए। हम अगर समझो अगर किसके बुरे संस्कार हैं तो हम परमात्मा को ध्यान करके हम उसको परिवर्तन कर सकते हैं, शक्तियां ले सकते हैं। और दूसरा ये है कि हम कभी कभी कोई बड़े पोस्ट वाले को इंसान होते हैं तो हम उनसे रिस्पेक्टली बात करते हैं, और कभी जो कम पोस्ट वाले होते हैं हम उनसे कैसे भी बात करते हैं। तो हमें इसमें परिवर्तन लाना है कि सबको हम एक ही दृष्टि से देखें, जैसे बाबा कहते हैं आत्मा की दृष्टि से देखना है सबको, भाई भाई और बहन बहन समझ के चलना है। हम शांति
बैठ जाइए। देखिए छोटे वहीं रख दीजिए, कितना अच्छा चिंतन किया ना। आत्मा का स्वधर्म शांति है, कितनी भी अशांत वातावरण में रहें अल्टीमेटली हम क्या पसंद करते हैं, शांति। और खुद छोटे बच्चे का उदाहरण देके कितना अच्छा समझाया ना। तो ज्ञान समझाने का ये भी एक बहुत सुंदर तरीका है कि हम अपने ज्ञान में एग्जांपल्स को डालें। बाकी सबने बहुत अच्छा चिंतन किया। आइए।
ओम शांति। संस्कार क्या है इसके बारे में उस बालक ने जो बताया वो काफी है। मैं एक लाइन बस ये बोलना चाहती हूँ परिवर्तन के बारे में कि पहले तो हमें परिवर्तन करने के लिए परख शक्ति होनी चाहिए। हम परखेंगे कि कौन से संस्कार सही हैं, कौन से गलत हैं। तो बाबा ने जो हमें परख शक्ति दी है उसके अनुसार से पहले हम परखें कि कौन कौन से संस्कार हमारे श्रीमत के अनुसार नहीं हैं और कौन कौन से संस्कार हमारे श्रीमत के अनुसार हैं। तो हम अपनी परख शक्ति से और योग से अपने संस्कारों में परिवर्तन कर सकते हैं। और दो तीन बैक संडे की मुरली में स्लोगन बहुत अच्छा आया था कि बीज रूप स्थिति, बाबा के अनुसार बीज रूप स्थिति में स्थित होने से ही संस्कार परिवर्तन होता है। पहले हम अपने अनुभवों के द्वारा जज करें, उसके बाद हम परमात्म शक्तियों से, परख शक्ति से उसको चेंज करें। ओम शांति।
बहुत अच्छी बात है, एक बहुत गहन बात आपने बताई कि बीज रूप स्थिति से। ये भी एक बहुत चिंतन करने की बात है कि बीज रूप स्थिति से कैसे संस्कार बदलते हैं। हम लोग जनरली बस बोल देते हैं बीज रूप से, उसके पीछे साइंस क्या है, इस पर आप सब जरूर चिंतन करना। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने बहुत अच्छा चिंतन किया। पर हम कहना ये चाहेंगे कि आप लोग इस आदत को कंटिन्यू करें। हम सब स्वेच्छा से इस जीवन को हमने अपनाया है, किसी ने फोर्स नहीं किया है बीके बनने के लिए, पुरुषार्थी बनने के लिए, योगी बनने के लिए। रुचि से इस ज्ञान मार्ग में हम आए हैं तो पुरुषार्थ भी हम रुचि से करें। पुरुषार्थ की जब बारी आए ना तो उसमें हम बहाने ना ढूंढे, एक्सक्यूजेस ना दे, बिजनेस का, घर का, परिवार का, हर एक के पास इतना समय तो होता ही है कि हम कुछ पुरुषार्थ के लिए समय निकाल पाए, क्योंकि यही हमारे साथ जाना है, ये हम सबको इसकी समझ भी है। तो प्रतिदिन की दिनचर्या में आधा घंटा भी, एक घंटा भी समय निकालकर शांत एकांत स्थान में बैठ करके खुद से बातें करें, आत्मचिंतन करें, ज्ञान का चिंतन करें, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे हमारा जीवन सरल होता जा रहा, मन जो है ना वो शांत होता जा रहा है, समस्याएं कम होती जा रही हैं, ज्ञान की समझ बढ़ रही है, संस्कार धीरे धीरे हल्के होते जा रहे हैं। तो इस आदत को आप सब कंटिन्यू करें और लिखें। चिंतन को लिखना बहुत जरूरी है, केवल ऐसे चिंतन करना और लिख करके चिंतन करना, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। तो अपने चिंतन को लिखने की भी आदत डालें, तो ये हमारे जीवन का एक अंग बनी, ऐसा हम सबको अपने अंदर एक समझ डेवलप करनी चाहिए। तो इसके साथ ही हम यहाँ का सत्र समाप्त करते हैं। अभी 2 मिनट हम बाबा की याद में बैठेंगे, उसके बाद भोजन के लिए जाएंगे।